अन्वय कुछ ही सेकंड में वापस वहां पहुंचा, पर जैसे ही वो वहां पहुंचा थोड़ा हैरान हो गया। अब वहां आनिया नहीं थी। अगले पल एक जानी पहचानी सी महक महसूस करते हुए उसकी भौहें तन गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके साथ ही उसकी जाने के बाद वहां क्या हुआ वो उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। अन्वय की जाने के बाद आनिया उदास खाली आंखों से उसी दिशा में देख रही थी। जैसे ही अन्वय उसकी आंखों से ओझल हुआ वहां धुआं फैल गया और अगले ही पल आनिया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उस धुएं से एक साया निकलकर बाहर आया और आनिया को देखकर उसके लबों पर शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने उसे किसी सामान की गठरी की तरह अपने कंधे पर डाल लिया और उसे लेकर धुआं बनकर उड़ गया। इसके साथ ही अन्वय ने अपनी आंखें खोल ली। आगे उसे कुछ नजर नहीं आया, पर उस साये को पहचानते ही अन्वय की आंखें गुस्से से नीली नीली हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जबड़ों को भींचते हुए बेहद गुस्से में चीखा, राका। वो अपनी मुट्ठियां कसते हुए पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। राका आनिया को उठाए हुए हवा की गति से जंगल के दूसरे छोर की तरफ बढ़ रहा था, जहां से विक्रांत का क्षेत्र शुरू होता था। पर वो अन्वय के क्षेत्र की सीमा को पार कर पाता उससे पहले ही एक तूफान ने उसको चारों ओर से घेर लिया। वो उसके बीच फंस गया, कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। अभी तक अन्वय यहाँ नहीं था तो कोई नहीं जानता था कि उस पर कौन सी शक्तियां हैं, जबकि अन्वय को उन सबसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त थीं। राका कुछ समझ भी नहीं सका और एक तेज हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। इसके साथ ही आनिया वहां से गायब हो गई और वो तूफान भी थम गया। राका ने हैरानी से सामने देखा तो उसके ठीक सामने अन्वय गुस्से से नीली आंखों से उसे ही घूर रहा था। अन्वय उसको घूरते हुए गुस्से से गरजा, तो फिर से अपनी चालबाजियों पर उतर आए तुम? मेरे क्षेत्र में आने की जरूरत भी कैसे की तुमने? क्या सोचा था तुमने, मेरे क्षेत्र में आकर एक मासूम लड़की को उठा ले जाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा और जाने दूंगा मैं तुम्हें? गलत इंसान को हाथ लगाने का गुनाह कर दिया तुमने। उस पर अगर कोई अपनी बुरी नजर डाले तब भी मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। तुमने तो उसे छूकर खुद अपनी मौत को अपने पास बुला लिया है। इतना कहकर अन्वय उसकी तरफ गुस्से में लपका। राका भी उससे भिड़ गया। दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई, पर राका अन्वय के सामने कमजोर पड़ने लगा था, इसलिए उसने आनिया पर झपट्टा मारा। पर अन्वय तेजी से उससे पहले आनिया तक पहुंच गया और उसको लेकर दूसरी दिशा में चला आया। अन्वय का ध्यान आनिया पर देख राका तुरंत वहां से भाग गया। अन्वय ने पलटकर गुस्से से उसे घूरा, पर इस वक्त उसके लिए आनिया ज्यादा जरूरी थी, जो उसकी बाहों में बेहोश पड़ी थी। उसने उसके माथे के बीचों बीच अपने अंगूठे को रखा और कुछ बड़बड़ाया। इसके साथ ही आनिया की पलकें हिलने लगी। अन्वय ने अपनी कुछ शक्तियों का प्रयोग करके उस पर से उस धुएं के असर को खत्म कर दिया था। धीरे धीरे आनिया ने अपनी पलकें उठाई तो अपने चेहरे के सामने अन्वय का चेहरा देखकर उसके लबों पर मुस्कान ठहर गई। अन्वय ने तुरंत ही उसको खुद से दूर कर दिया। आनिया ने अब आसपास देखते हुए कहा, मैं यहाँ कैसे आई? और तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना, फिर वापस क्यों आए? क्योंकि तुम्हारी जिद और बेवकूफी की वजह से अभी अभी तुम किसी का शिकार बनने वाली थी। बहुत शौक है ना तुम्हें मरने का? अभी अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो सच में देख लेती कि मौत क्या होती है, अन्वय ने उसको गुस्से से घूरते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। तो आनिया ने उसकी हथेली थामकर मुस्कुराकर कहा, मतलब आज फिर तुम मुझे बचाने आए ना? इतनी परवाह करते हो मेरी, फिर भी ये मानने से इनकार करते हो कि मोहब्बत है तुम्हें भी मुझसे? जब मोहब्बत नहीं है तो इनकार ही करूंगा, अन्वय ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा। आनिया भी अब उठकर खड़ी हो गई और उसके सामने आते हुए बोली, अच्छा अगर मोहब्बत नहीं तो मुझे खतरे में देखकर क्यों हर बार भागे चले आते हो मुझे बचाने? मर जाने दिया होता, छुटकारा मिल जाता तुम्हें मुझसे। उसकी बात सुनकर अन्वय ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस ली, खा जाने वाली नजरों से उसको घूरते हुए निगाहें फेर ली और आगे बढ़ते हुए बोला, चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? आनिया ने उसकी हथेली को थामकर उसके बगल में चलते हुए कहा। तो अन्वय ने घूरकर अपने हाथ को देखा, फिर आनिया को घूरा, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बत्ती सी चमकाते हुए कहा, बताओ ना कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? उसकी बेपरवाही एक बार फिर अन्वय को हैरान कर रही थी। उसने नाखुशी से गर्दन दाएं से बाएं हिलाई, फिर आगे बढ़ते हुए बोला, ऐसी जगह जहां तुम्हारी जान को खतरा ना हो। मेरे साथ नजर आ गई हो तुम, अब मेरे दुश्मनों की नजर रहेगी तुम पर और मैं अपनी वजह से किसी भी निर्दोष को मरने नहीं दे सकता, इसलिए जब तक मैं सब ठीक नहीं कर देता तुम मेरी निगरानी में रहोगी। मतलब तुम मुझे अपने घर लेकर जा रहे हो, लेकिन तुम इंसान थोड़े हो, तुम्हारा तो घर होता ही नहीं होगा, तो मुझे कहाँ रखोगे? मैं जंगल में खुले में नहीं रहूंगी। आनिया ने घबराकर उसको देखा और चलते चलते रुक गई। अन्वय ने मुड़कर उसे देखा और आगे खींचते हुए बोला, कोई तुम्हें खुले जंगल में नहीं रख रहा, अब जल्दी चलो वरना यहीं छोड़कर चला जाऊंगा तुम्हें। जाओ जाओ, अभी छोड़कर गए भी तो कुछ ही मिनट बाद खुद ही मुझे ढूंढते हुए लौट कर आओगे, इसलिए ये धमकी तो मुझे दो मत।
मैं सब जानती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, आनिया ने मुंह बनाते हुए कहा। पर इस बार अनवई ने पलटकर उसको जवाब नहीं दिया। आगे चलते हुए मन ही मन बोला, सच में कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानने लगी हो तुम मुझे। तुमसे दूर रहना और भी मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। सोचा था तुमसे दूर चला जाऊंगा तो तुम भूल जाओगी मुझे, पर तुम तो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई, और अब मैं चाहूँ भी तो तुम्हें यहाँ से वापस नहीं भेज सकता। पता नहीं कुदरत कैसा खेल खेल रहा है मेरे साथ। अनवय सही सोचते सोचते चलता रहा और आनिया अपने में बोलते हुए आसपास देखते हुए उसके साथ चलती रही।